स्तुभ्यं वर्धे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जय लो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। परम पूज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं क्लास प्रारंभ हो रही है। गोमठ सार जीव कांड सार और संस्कृत व्याकरण आप सब रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं और ध्यान देना है कि आज 3 मार्च है, परसों 5 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है 54 गाथाओं की, 54 गाथा, यानी कि 34 नंबर की गाथा से लेकर और वेद मार्गणा 87 नंबर की गाथा तक 54 गाथाओं की परीक्षा होगी। उससे पहले आप परीक्षा दे ही चुके हैं, अच्छा उसका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो अब 1-2 प्रश्नों के पश्चात विषय पर आती हूं। जिनको प्रश्न का उत्तर आता हो अपनी छोटी सी परीक्षा समझ करके और अच्छे से उत्तर दीजिए, हैंड रेज कीजिए। बताइएगा कि लब्ध पर्याप्तक जीव के क्षुद्र भाव कितने होते हैं, क्षुद्र भावों की संख्या बताना है आपको। पर्याप्ति अधिकार के अंदर यह प्रकरण आया है। एक लब्ध पर्याप्तक जीव यदि निरंतर जन्म मरण को करे तो अंतर मुहूर्त में कितने भावों को धारण कर सकता है, यानी कितने क्षुद्र भाव ले सकता है। हैंड रेज करें हमारी लीसा जी।
66,336
प्रियांश को ये तो बताती रहती हैं। प्रियांश जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए।
हाँ 66,336 भाव धारण कर देते।
पहला उत्तर बताया और एकदम सही है, यानी एक लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 भावों को धारण कर सकता है। इसी के लिए कहा है एक श्वास में 8-10 बार जन्मियों मरियो भरियो दुख पार भार, यानी कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले एक लब्ध पर्याप्तक जीव के अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव हो सकते हैं। तो अब आगे आपको बताना है कि 2 इंद्री जीव के कितने प्राण होते हैं। 2 इंद्री जीव के, हाँ कोई बात नहीं, 2 इंद्री जीव के कितने प्राण होते हैं। हैंड रेज करें जिनको आता है। प्राण प्ररूपणा के अनुसार आपसे ही प्रश्न पूछा गया है। 20 प्ररूपणाओं में से प्राण प्ररूपणा, चतुर्थ प्ररूपणा के अंतर्गत देखो कौन आ जाओ भाई अलकाबेन जी। और आज चलिए दोबारा प्रश्न करती हूं। 2 इंद्री जीव के कितने प्राण होते हैं। देखो इसमें मीनाक्षी शाह, इनको हाँ बताइए मीनाक्षी।
वंदना माता जी, दो इंद्रिया के पांच प्राण होते हैं।
स्पॉटलाइट करें अगले को। दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? प्राण नाम की प्ररूपणाधिकार में बताया गया है आपको। चलिए आप दूसरे को स्पॉटलाइट।
वंदनीय माता जी, दो इंद्रिय जीव के छह प्राण होते हैं। स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय होती हैं, काय बल और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास।
दो इंद्रिय जीव के स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्रियां हो गईं, और वचन बल और श्वासोच्छ्वास, ये छह प्राण दो इंद्रिय जीव के होते हैं। अब आगे आपको संज्ञाएं कितनी होती हैं, उनके नाम, संज्ञा कितनी होती हैं उनके नाम बताना है।
चार भय, मैथुन और परिग्रह।
क्लैपिंग करें, एक दूसरे के लिए ही तालियां बजाएं। संज्ञा चार होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक सभी जीवों की संज्ञाएं होती हैं। चलिए अब आगे का विषय लेते हैं, क्योंकि अब केवल आपके पास आज और कल का दिन है, और फिर परसों आपका पेपर होना है, अच्छे से तैयारी करना है। आप वेद मार्गणा के अंदर हैं। वेद मार्गणा में आपने वेद का लक्षण जाना, पुरुष वेद और स्त्री वेद के स्वरूप को जाना। यहीं पर लेके बैठो ना, वहां बार बार जाते हो। यहाँ लो। हाँ, वेद मार्गणा में अब मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कहने का संकल्प लेकर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन प्ररूपणाओं में संसारी अशुद्ध जीव का वर्णन अच्छे से किया है। तो उसके अंदर हम दसवीं प्ररूपणा में हैं, वेद मार्गणा और दसवीं प्ररूपणा। तो अब इसमें नपुंसक वेद का वर्णन चलेगा। नेवित्थि नेव पुमम,
नेवित्थि नेव पुमम,
नउंसो उहय लिंग वदीरितो,
नउंसो उहय लिंग वदीरितो,
इट्ठावग्गि समाणग,
इट्ठावग्गि समाणग,
वेदण गर्वो कलुष चित्तो,
वेदण गर्वो कलुष चित्तो।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा।
नेवित्थि नेव पुमम, नउंसो उहय लिंग वदीरितो, इट्ठावग्गि समाणग, वेदण गर्वो कलुष चित्तो।
नैव स्त्री नैव पुमान नपुंसक उभय लिंग व्यतिरिक्तः, इष्टा पाकाग्नि समानक वेदना गुरुकः कलुष चित्तः। यानी दो वेदों की जब बात पड़ी, पुरुष वेद कर्म के उदय से, भाव वेद पुरुष का बनता है, स्त्री वेद के उदय से भाव वेद स्त्री का बनता है, और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य से आकार बनता है पुरुष और स्त्री का। आम नपुंसक में दिया है कि नैव स्त्री नैव पुमान, जो ना स्त्री हो और ना पुरुष हो। नउंसो उहय लिंग वदीरितो, इन दोनों ही लिंगों से व्यतिरिक्त माने रहित को नपुंसक कहते हैं। नपुंसक लिंग वाला होता है, जिसके ना स्त्री वेद है ना पुरुष वेद है, एक अलग ही तरह का उनका जो भी आकार होता होगा, ऐसे दोनों ही लिंगों से रहित जीव को नपुंसक कहते हैं, उनके नपुंसक लिंग होता है। इट्ठावग्गि समाणग, इसमें कह रहे हैं इष्टा पाकाग्नि समानक, यानी इष्ट पाक के अंदर, जैसे ईंट की भट्टी के अंदर अग्नि जो जलती है उसके समान तीव्र कषाय से संयुक्त होते हैं जो नपुंसक वेदी हैं। तो नपुंसक वेदियों का चित्त प्रतिक्षण वेदना गरुक कलुष चित्ता, वे हमेशा हर समय कलुषित चित्त वाले ही रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर इष्टपाक ईंट के भट्टे के समान अग्नि की तरह से हमेशा तीव्र कषाय उत्पन्न होती रहती है, इसलिए वे नपुंसक कहे जाते हैं, यानी उनके नपुंसक लिंग होता है। अब आपको जानना यह है कि ये लिंग या वेद ये नौ कषाय में आते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये नौ कषाय में, यानी कषाय से इनकी स्थिति ईषत कम होती है, तो इनको नौ कषाय की संज्ञा से बताया गया है। तो तीनों वेदों के बारे में आपने जान लिया है, वर्तमान में भी तीनों ही वेद पाए जाते हैं और स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के मनुष्यों में वेद होते हैं और कर्मभूमि त्रियंचों में भी। और इस वेद मार्गना के अंदर आपने जाना है कि भोग भूमिया नरक के त्रिय और देवों के जो द्रव्य वेद होता है वही पुरुष होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, विषमता नहीं होती है। और कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंचों के विषमता भी होती है, एक समान भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं, जिनका जो लिंग है द्रव्य से पुरुष से भाव से दूसरा वेद भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि जन्म से लेकर मरण तक एक ही वेद का उदय होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो शुरू से हो जाता है वही वेद रहता है। यदि कोई द्रव्य से पुरुष वेदी है और भाव से स्त्री वेदी है या नपुंसक वेदी है, फिर भी वह मुनि बन करके छठे सातवें गुण स्थानों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये विशेष बात आपको जानना है। अब इसके अंतिम गाथा है इस वेद मार्गणा की, वेद रहित जीव कौन होते हैं। तृणकारी सिट्ठ पाग की सरिस परिणाम वेदनु मुक्का,
तृणकारी सिट्ठ पाग की सरिस परिणाम वेदनु मुक्का,
अवगय वेदा जीवो
अवगय वेदा जीवा
सग संभवनंत वर सोखा,
सग संभवनंत वर सोखा।
सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। तृणकारी सिट्ठ पागक की सरिस परिणाम वेदनु मुक्का, अवगय वेदा जीवा सग संभवनंत वर सोखा। तृणकारी श्रेष्ठ पाकाग्नि सदृश परिणाम वेदनु मुक्ता, अपगत वेदा जीवा स्वक संभवानंतर्वर सौख्या। इसके माध्यम से बता रहे हैं कि वेद रहित जीव माने जिनके कोई वेद नहीं होता, ऐसे कौन होते हैं। संक्षेप में जाने तो सिद्ध जीव ऐसे होते हैं जो अपगत वेदी कहलाते हैं, वेद रहित होते हैं। तो जो तृणकारी सिट्ठ पागज्ञी माने कि तृण की अग्नि, कारीश की अग्नि और इष्टपाक अग्नि यानी हवा की भट्टे की अग्नि के समान वेद के परिणामों से जो परिणाम वेद उन्मुखा, ऐसे उन वेद के परिणामों से जो विमुक्त रहते हैं, उन्मुक्त रहते हैं, रहित होते हैं, अपगत वेदा वे जीव अपगत वेदी कहलाते हैं, वे वेद रहित कहलाते हैं। और उन जीवों के फिर न स्त्री जनित सुख है, न पुरुष जनित सुख है, न नपुंसक जनित दुख है। तो सग संभव अनंत वर सुखा यानी कि अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनंत और उत्कृष्ट सुख का उपभोग करते हैं, वेद रहित होकर के सिद्ध जीवों के सारी क्षायिक गुण हो जाते हैं। तो वहां वेद रहित अवस्था में किसी प्रकार का उनको कोई दुख नहीं होता, बल्कि अनंत और उत्कृष्ट सुख को वे अनंत काल तक भोगते रहते हैं। तो क्या है, तृण की अग्नि के समान पुरुष वेद की कषाय कही गई है और कारीश कंडे की अग्नि के समान स्त्री वेद की कषाय कही गई है और हवा माने भट्टे की अग्नि के समान नपुंसक वेद की कषाय कही गई है। इन तीनों कषायों से जो रहित हैं वे दुखी नहीं हैं, किंतु आत्मोत्त माने आत्मा से उत्पन्न हुए सर्वोत्कृष्ट अनंत सुख के भोक्ता हुआ करते हैं। तो वेद मार्गणा को बता करके अपगत वेदी का लक्षण कह करके इस वेद मार्गणा को समापन किया। हर मार्गणा के अंदर आप देखते हैं इंद्री मार्गणा में आगे इंद्रियातीत अनिंद्रिय जीवों का वर्णन करते हैं, कषाय मार्गणा में कषायातीत अकषायी जीवों का वर्णन करेंगे, यानी सांसारिक पहले सांसारिक स्थिति से जीव का वर्णन करते हैं कि कितनी कषाय हैं, कितने वेद हैं, कितनी पर्याप्ति हैं, ये सब कहा। उसके बाद में इन सब से रहित सिद्ध भगवान की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। तो इस प्रकार से वेद मार्गणा परिपूर्ण होती है और आप सबको इस वेद मार्गणा तक ही परीक्षा देना है। 34 नंबर की गाथा से लेकर 87 तक 54 गाथाएं हैं 54, और हो सकता है कि पीछे की गाथाओं में से भी कोई प्रश्न आ जाए, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। और कल के दिन केवल प्रश्न उत्तर करके आपके विषय की तैयारी कराई जाएगी और आप सब बिल्कुल निर्भीक होकर के निर्भय होकर के एक दूसरे को परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें और आप स्वयं परीक्षा देकर अच्छे नंबरों से पास हों, यही माता सरस्वती से आपके लिए प्रार्थना है। चलिए अब